الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا، وقال الله تعالى في مقام آخر: وجعلنا نومكم سباتا. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه: إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس والی کلاس کے اندر ہم اپنے حضرت بیر الفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ بیانات امور خانداری میں حسن انتظام میں سے نیند کا نظم یعنی سلیپ مینجمنٹ والا بیان پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے زندگی کے مختلف سائیکلز کا عنوان پڑھا کہ انسانی زندگی میں 7-7 سال کے سائیکلز جو ہیں وہ آتے ہیں، جن کے اندر انسان کی جسمانی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے، ترقی ہو رہی ہوتی ہے. ایک سائیکل میں یعنی 0 سے لے کے 7 سال تک میں بہت میجر تبدیلیاں ایک خاص قسم کی آتی ہیں. پھر اس کے بعد 8 سے لے کر کے 14 سال تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں. پھر اس طرح سے معاملہ چلتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد نیند اصل میں ہے کیا، اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشنز بھی ہم نے پڑھی، اور نیند کے 5 سٹیجز یا 4 سٹیجز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کیے، جیسے کہ حضرت نے یہاں پہ لکھا تھا. اس میں کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ 4 سٹیجز N1, N2, N3 یہ نان ریپڈ آئی موومنٹ سٹیجز کہلاتی ہیں، NREM. اور اس کے بعد پھر آخری سٹیج یعنی چوتھی سٹیج جو ہے وہ ریپڈ آئی موومنٹ سٹیج کہلاتی ہے. ان سٹیجز کے اندر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر، یہ سب ہم نے پڑھا تھا. پھر اس کے بعد نیند کا اپنا سائیکل کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے نیند کا سائیکل، 90 منٹ سے لے کر کے 120 منٹ تک کا یہ مختلف لوگوں کے اندر سائیکل ہوتا ہے. تو ایک سائیکل سونا، 2 سائیکل سونا، 3 سائیکل سونا، یہ ساری ڈسکشن ہوئی تھی. پھر اس کے بعد آخری کلاس میں ہم نے نیند کی سٹیجز کا تذکرہ قرآن مجید میں یہ ہم نے پڑھا تھا، پیج نمبر 163 سے. اور نیند میں حکمت، کہ یہ نیند اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ اس کی عظمت کا اظہار ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں کہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہو، یعنی لوگ پہچانے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو. اللہ کے علاوہ اور کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کری ہے. ٹھیک ہے، تو مخلوق اگر خالق کی عظمت کو پہچانے تو یہ تو عین حق بنتا ہے خالق کا، کیونکہ اسی نے تو مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ بھی مخلوق کے پاس ہے وہ سارا کا سارا خالق کا ہی دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی اس طرح سے نیند کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا تأخذہ سنت ولا نوم. ٹھیک ہے، آیت الکرسی کے اندر اللہ کی جہاں باقی عظمتوں کا ذکر ہے نا، اور قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی اللہ کی باقی عظمتوں کا ذکر ہے، تو وہیں پر یہ عظمت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی کہ مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ اس کے برعکس انسان خود جانتا بھی ہے کہ اس کو اونگ بھی آتی ہے، اس کو نیند بھی آتی ہے، اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد پھر نیند کی جسمانی گھڑی، یہ ٹاپک آج ہم نے پڑھنا شروع کرنا تھا کہ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی نیند کے لیے باقاعدہ بنائی ہوئی ہے، فٹ کری ہوئی ہے، نیچرل کلاک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیں कि अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पर हर इंसान के जिस्म में एक घड़ी फिट कर दी है। घड़ी से मुराद ये नहीं जो कि हम डायल्स के साथ देखते हैं, ये सेकंड का डायल और ये घंटे का डायल और ये जो मिनट का डायल या सुई जो होती है उसके अंदर, उसको डायल कहते हैं अंग्रेजी में। तो ऐसी घड़ी नहीं, बल्कि घड़ी से मुराद वो चीज जो कि आपका टाइम सेट करती हो या आपको टाइम बताती हो। ठीक है, ऐसी किसी भी चीज को मुहावरतन घड़ी कह दिया जाता है। तो फरमाते हैं कि चुनाचे अगर हमारे पास कोई घड़ी ना हो और हम एक ऐसी जगह हो कि जहां पर हम कहीं अंदर बंद हैं, तो भी हमारा बदन खुद ब खुद अंदाजा लगा लेता है कि अब दिन का वक्त शुरू हो गया है या रात का वक्त शुरू हो गया है। इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो यहां पर जो उर्दू में लिखा हुआ है ना, सरकार्ड या सरकार रिदम, तो वो लिखने में कभी गलतियां हो जाती हैं। हजरत की दूसरी किताबों में भी, बयान में तो हजरत ने कुछ फरमाया था, लेकिन जो किताब को सब ट्रांसक्राइब करते हैं ना, तो वो सुन करके फिर कभी कभी स्पेशली अंग्रेजी की जो टर्म्स होती हैं उनको नोट करने में कभी गलती हो जाती है। तो हमने मिसाली औरत में भी इस तरह की एक दो गलतियां नोट करी थी, यहां पर भी ये गलती है, इसको ठीक कर लें आप। तो अंग्रेजी के टर्म लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, उसी को फिर उर्दू में अगर लिखना चाहें तो आप इसको यानी उर्दू में फिर आप लिख सकते हैं सर्कैडियन रिदम। जी, तो ये प्रॉपर टर्म है सर्केडियन, सब देख सकते हैं ना इसको, एवरीवन पर ही भेज है। ठीक है, तो उसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। तो ये यानी हजरत ने जो लिखा है कि बदन खुद ब खुद अंदाजा लगा देता है कि अब दिन का वक्त शुरू हो गया है या रात का वक्त शुरू हो गया है, तो इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। आगे पढ़ करके फिर उसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज होती है ना। तो फरमाते हैं कि इंसान सोया हुआ है, तो जब सूरज तुलू होता है तो उसकी रोशनी आंखों के जरिए से दिमाग के एक हिस्से पर जाती है जिसको SCN कहते हैं। ठीक है, SCN, यहां पर भी एक और गलती है, SEN हजरत ने तो खैर SCN ही कहा था, लेकिन लिखने वाले ने उसको SEN लिख दिया है, हालांकि ये है SCN। ठीक है, SCN, यानी ये एक और गलती है, तीसरी गलती हो गई। तो एक मिनट, कहीं पर लिख के रखनी चाहिए, बल्कि हमने भी इंटरनेट से ही देखी है, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं टाइप कर। तो ये है सुप्रा खियास्मैटिक न्यूक्लियस। क्या? सुप्रा खियास्मैटिक न्यूक्लियस, SCN। तो दिमाग का एक हिस्सा है जिसको SCN कहा जाता है। ये दिमाग का एक हिस्सा है जिसका ताल्लुक नींद के साथ होता है। आंखों से रोशनी का सिग्नल इंसान के दिमाग का, इंसान के बदन में हैप्पी हॉर्मोन्स, खुशी के हॉर्मोन्स, ठीक है, यानी खुशी की रतूबत, उर्दू में हॉर्मोन को रतूबत ही कहा जाता है, यानी एक लिक्विड मैटर होता है जो कि बदन के अंदर ग्लैंड्स से हुदूद ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ वदूद जो है, ये तो अंग्रेजी में कहेंगे कि मुख्तलिफ हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स। ठीक है, तो जब ये आंखों से रोशनी का सिग्नल इंसान के दिमाग के हिस्से को जाता है और ये हिस्सा इंसान के बदन में हैप्पी हॉर्मोन्स पैदा कर देता है, ऐसे हॉर्मोन्स यानी ऐसी रुतुबतें जो है वो हाँ सॉरी, रिदम की मैंने स्पेलिंग ऐसे लिखी, RHYTHM, हाँ वाई गलत जगह पे लिख दिया, ये टाइप इस वक्त मतलब यही होगा ना। चलिए जजाक मिला। तो रिदम के इन्होंने स्पेलिंग भी सही कर दी। चुनाचे इंसान सॉरी ऐसे हॉर्मोन्स खुशी और फ्रेशनेस यानी ताजगी का सबब होते हैं। चुनाचे इंसान इस वक्त में खुद ब खुद जाग जाता है, जिस्म जागने का अलार्म दे देता है। ठीक है, तो जो आंखें होती हैं ना, इंसान की आंखों के अंदर रेटिना होता है, ठीक है, वो जो लेंस होता है हमारी आंख के अंदर, तो उस रेटिना के पीछे जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये एक एक ये SCN होता है, ठीक है, हमारी आंखों के पीछे यानी सर के अंदर, ये दिमाग के नहीं, आंखों से अंदर जो सिग्नल जाते हैं तो पीछे जो होता है वो दिमाग होता है, तो ये दिमाग का एक रीजन है SCN, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स के ऊपर होता है ये। ऑप्टिक यानी आंखों से रिलेटेड चीजों को ऑप्टिक कहते हैं, ठीक है, जैसे ऑप्टिशियन, आंखों को जो चश्मा बनाने वाले होते हैं उनकी दुकान पे लिखा होता है ऑप्टिशियन, या ऑप्टिकल को इन्होंने अपना नाम रखा हुआ होता है। तो ऑप्टिक नर्व जो होती हैं उनके ऊपर ये टाइनी ब्रेन रीजन होता है जिसको SCN कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक यानी एक हयातियाती घड़ी के तौर पर ये एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, जब रात आती, ये जब यानी सूरज की रोशनी आंखों के जरिए से अंदर पहुंचती है ना, तो ये इसको पता चल जाता है कि अच्छा जी अब रोशनी हो गई है, तो ये जो है वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। हैप्पी हार्मोन्स के बारे में हमने थोड़ी तहकीक करी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करी लेकिन थोड़ी सी करी, तो वो चार किस्म के हैप्पी हॉर्मोन्स आजकल डॉक्टर्स कहते हैं, आजकल डॉक्टर्स कहते हैं, मैं खास तौर पे कहता हूँ क्योंकि कल को इनकी थोड़ी और रिसर्च मजीद एक्सटेंड होगी, मजीद बढ़ेगी, तो ये और कर देंगे, क्योंकि ये जो इल्म होता है डॉक्टरों का, जो इल्म है ये जन्नी इल्म होता है। आप हॉर्मोन्स कह रहे हैं, कल को थोड़ी तहकीक करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं सॉरी हमने चार गलत कह दिए थे, हम असल में तो तीन हार्मोन होते हैं, ठीक है, या कहेंगे कि नहीं हमने पांचवा हार्मोन भी डिस्कवर कर लिया है, तो फिर पांच हार्मोन बन जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आज इस खास तौर पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आजकल ये कह रहे हैं कि चार हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो उन हैप्पी हॉर्मोन्स में से एक जो होता है वो सेरोटोनिन होता है, SEROTONIN, SEROTONIN, वन ऑफ द हैप्पी हॉर्मोन्स। डोपामाइन का आजकल बहुत ज्यादा नाम मशहूर हुआ हुआ है कि वीडियो गेम्स खेलने से डोपामाइन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, और जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो आप बहुत ज्यादा जैसे फेसबुक वगैरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं तो डोपामाइन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो वो डोपामाइन भी जो है ना वो भी हैप्पी हॉर्मोन, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन जब बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए ना तो फिर वो बुरी चीज बन जाती है। एतदाल में रहे तो वो अच्छी होती है, और एतदाल से जो भी चीज आगे या पीछे हो जाए तो वो बुरा हो जाता है, ठीक है। तो डोपामाइन भी हैप्पी हॉर्मोन है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम नींद से मुताल्लिक बात कर रहे हैं तो नींद से मुताल्लिक जो हैप्पी हॉर्मोन होता है ना वो सेरोटोनिन होता है, ठीक है। तो ये आपके मूड्स को स्टेबलाइज करता है, यानी आपके उर्दू में भी हम मूड कहते हैं ना, इसका मूड अच्छा है, इसका मूड जो है वो खराब हो गया है, तो मूड को जो है ना ये बाकायदा स्टेबलाइज करता है, यानी सही में मकदार में लेकर के आता है, ठीक है। तो ये मूड स्टेबलाइजर कहलाता है, और इससे जो है वो आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कामनेस, ठीक है, कामनेस आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी ये जो हाइपर हो जाना, वो हाइपर हो जाना बहुत ज्यादा ओवर हो जाना किसी चीज के बारे में, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, यानी ओवर जज्बातियत, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो शिद्दत के जज्बात आ जाए तो ये इंस्टेबिलिटी कहलाती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। तो ये जो हार्मोन होता है ये अल्लाह ताला ने इमोशनल स्टेबिलिटी को पॉज करने के लिए हमारे अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर है कि ये हार्मोन जो है वो सही मकदार में रिलीज हो रहा है, जैसे अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम है, तभी इसकी वजह से इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर ये हार्मोन ही कम रिलीज होना शुरू हो जाए या ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो भी खराब ही होगा। ठीक है, तो ये अल्लाह का बनाया हुआ ये निजाम है। अल्लाह ताला देखें, जैसे है ना, बारिश बरसाता है तो फरिश्ते जो हैं वो बारिश का एक एक कतरा लेकर के नीचे आते हैं। ठीक है, ठीक है, जिस तरह फरिश्ते बनाए हैं कि वो इस तरह से काम करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, तो उसी तरीके से ये जो बॉडी के ग्लैंड्स हैं, दिल चाह तो ये करना शुरू कर दिया, दिल चाह तो वो करना शुरू कर दिया, ग्लैंड्स का दिल चाह नहीं, बल्कि अल्लाह के निजाम के तहत ये काम करते हैं। तो असल में तो साइंस पढ़ाने का ये तरीका है कि भाई ये होता है, ये होता है, तो भाई क्या खुद ब खुद हो रहा होता है? नहीं, खुद ब खुद नहीं हो रहा होता, अल्लाह ताला करवा रहे होते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा होता है। और जब अल्लाह ताला का इंसान हुक्म तोड़ता है, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो हुक्म देते हैं कि अब तुम ऐसे ना करो, अब तुम्हारा जो सही तरीका है वो सही तरीके से काम करने के बजाय गलत तरीके से, क्योंकि इसने जो है वो मेरा हुक्म मानने से इनकार किया, तो अब इसके अंदर जो ग्लैंड्स होंगे ना वो भी फिर इसका हुक्म मानने से इनकार करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही वाला मामला है कि जैसे कि जब हम ऊपर वालों का हुक्म तोड़ते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे नीचे वालों को हमारी हुक्म की तोड़ने का मना देते हैं ना, है ना भाई, ऊपर वाले का हुक्म तोड़ते हैं तो नीचे वाले हमारा हुक्म तोड़ते हैं। तो हर चीज को हमें ऐसे ही देखना है, हर चीज को, हत्ता कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो ग्लैंड्स हैं ये भी हमारे नीचे वाले, जैसे हमारे मातहत हैं। ठीक है, तो जब हम अपने ऊपर वाले का हुक्म तोड़ते हैं, तो हमारा मातहत यानी हमारे जिस्म का ग्लैंड वो हमसे अनकोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और वो वाला गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, हमें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, किसी ने यहाँ पे सेरोटोनिन, मूड, ऑक्सीटोसिन, जी, और भी है, चार चार जो बताए थे ना, तो चार में से एक सेरोटोनिन है, एक वो मेलाटोनिन, एक ये सॉरी ऑक्सीटोसिन भी है, और भी डोपामाइन भी है, और चौथा भी। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि और जब रात आती है तो इंसान के जिस्म में ये हिस्सा वो हार्मोन पैदा करता है कि जो कि इंसान को सोने पर आमादा कर देता है। चुनाचे जो दिन के हार्मोन्स हैं उनको सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, यानी सुबह को जो सूरज की रोशनी अंदर जाती है ना, तो वो सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज होना शुरू होते हैं, और जो रात के हार्मोन्स हैं उनको मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस्म खुद ब खुद इंसान को सोने का सिग्नल भी देता है और जागने का सिग्नल भी देता है। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में गोया नींद के लिए ये घड़ी खुद ब खुद फिट कर दी है। ठीक है, तो जिस्म खुद ब खुद इंसान को सोने का सिग्नल भी देता है और जागने का सिग्नल भी। कैसे देता है भाई? कि उसको जो है ना वो रोशनी के जरिए से सिग्नल मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक मसला है। ठीक है, वो मसला क्या है कि जो पहला जुमला हजरत ने यहाँ पे लिखा था, बल्कि दूसरा जुमला जो इस टॉपिक के अंदर लिखा था, ये अगर हम कहीं अंदर बंद हैं तो भी हमारा बदन खुद ब खुद अंदाजा लगा लेता है कि अब दिन का वक्त शुरू हो गया है या रात का वक्त शुरू हो गया। तो अंदर बंद है का क्या मतलब होता है? अंदर बंद है का मतलब यह है कि सूरज से आपका वास्ता नहीं है। ठीक है ना, यानी सूरज की रोशनी जो है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो जब सूरज की रोशनी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, तो फिर ये कैसे अंदाजा लगा लेते हैं? हालांकि आगे तो ये लिख रहे हैं कि सूरज की रोशनी आंखों से होते हुए पीछे जो है ना वो ऑप्टिकल नर्व्स के ऊपर का जो ब्रेन रीजन होता है वहां पे पहुंचती है, फिर जो है ना वो सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो जब आप कमरे में बंद हैं तो सूरज की रोशनी आंखों में पहुंच ही नहीं रही, तो फिर आपको कैसे कैसे होगा? ठीक है, तो ये खुद ब खुद कैसे अंदाजा लगा रहते हैं? वो ऐसे होता है कि ये जो एक दफा जब आप घड़ी को सेट कर लेते हैं, ठीक है ना, जब एक दफा आप घड़ी को सेट कर लेते हैं तो फिर आपको रोजाना तो घड़ी सेट नहीं करनी पड़ती है ना, ठीक है, रोजाना तो आपको घड़ी सेट नहीं करनी पड़ती है। तो अब जो है वो आपके जो है वो सुबह को अगर आपने टाइम सेट कर लिया कि जी आपने सुबह 7 बजे जो है ना वो जाग जाना है, या फजर के वक्त में जाग जाना है, या सुबह 7 बजे में जाग जाना है, फजर के बाद बेशक आप जो भी हो सो हो गए, फिर उसके बाद इशराक के बाद आप सो गए, फिर आप उठे, तो 7 बजे आपने अपनी एक्टिविटीज शुरू करनी। तो ये 7 बजे का एक दफा जब आपने सेट कर लिया ना, तो अब ये हर दिन यही यही चलता रहेगा, ठीक है। गोया कि ये ट्रेनिंग होती है, ये जिस्म के अंदर जो मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, ये क्लॉक जो है वो एक दफा आप ट्रेन कर देते हैं तो फिर ये अब इसको हर दिन जो है वो सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, ये बगैर सूरज की रोशनी के भी उसी टाइम पे ये उठ जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा लेकिन है, वो क्या, उसके लिए वही घड़ी की मिसाल समझे कि घड़ी को एक दफा आपने सही टाइम के ऊपर सेट कर दिया, अब वो घड़ी रोजाना चलती है ना, वो ठीक है वो चलती रहती है, सही है। अब रोजाना तो नहीं आपको घड़ी को जो है वो फिट करना पड़ता, लेकिन उस घड़ी के अंदर एक बैटरी होती है ना, ठीक है, वो बैटरी उस घड़ी को चलाती है, सही है। अगर बैटरी अंदर से वीक होना शुरू हो जाए, जब बैटरी वीक होती है तो फिर क्या होता है, घड़ी आउट हो जाती है ना, फिर घड़ी स्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो स्लो होना शुरू हो जाती है तो फिर क्या जरूरत पड़ती है कि फिर आप उसको रोजाना ठीक करें, फिर उसको उसको जो है वो सही टाइम के ऊपर सेट करें, लेकिन बैटरी स्लो है। अच्छा, स्लो भी वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है, एकदम से बैटरी एकदम से बंद नहीं हो जाती है ना, बैटरी की पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती है ना, तो पहले थोड़ी स्लो होती है, आपको अंदाजा, अच्छा ये तो 4 मिनट नीचे चली गई, सही टाइम से जो है ना वो बैटरी वो हमारी घड़ी 4 मिनट स्लो हो गई है, तो आप उसको थोड़ा सा आप उसको सही कर देते हैं, 4 मिनट आगे कर देते हैं, फिर वो चलती रहती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद आप देखते हैं फिर वो 4-5 मिनट स्लो हो गई है, फिर आप उसको ठीक कर देते हैं, ठीक है, फिर जो है वो और बैटरी वीक हो जाती है, वो 10 मिनट स्लो हो जाती है, फिर आप उसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो इसका जो ये साइकिल है, ये आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या कि बेशक आप अपनी घड़ी को एक दफा सेट कर देते हैं तो वो चलती तो रहती है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई बाहर से कोई चीज जो है असरअंदाज हो रही है, ठीक है, तो उसके असर अंदाज होने की वजह से ना ये घड़ी आपकी आउट होनी भी शुरू हो जाती है। अगर बाहर से कोई चीज असर अंदाज हो रही है, दूसरे तरीके से असर अंदाज हो रही है, तो ये आउट भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से सर्केडियन रिदम, सॉरी, ये जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो ये सूरज की रोशनी तो बाहर से आपको मिली और चंद दिन अगर मिली तो आपने टाइम अपना सेट कर लिया जो भी, लेकिन फिर उसके बाद ये अगर आपने फिर जो है ना वो लाइट का सिस्टम और चेंज कर दिया और बाहर से अब आपको सूरज की रोशनी तो मिल नहीं, भाई सूरज का तो अल्लाह ताला ने टाइम सेट किया हुआ है, वो तो फजर के वक्त ही, इशराक के वक्त ही सूरज निकलेगा और मगरब के वक्त ही गुरूब होगा, ये तो कोई इंसान चेंज नहीं कर सकता ना, सूरज को तो चेंज नहीं कर सकता कि कोई कहे कि नहीं, आज जो है ना वो सूरज जुहा के वक्त निकलेगा, चाश के वक्त सूरज निकलेगा, ठीक है, और जो है वो ईशा के बाद ग्रुप होगा, सूरज को तो आप चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, सूरज तो अपने टाइम पे चल रहा है, लेकिन आप क्या चेंज कर सकते हैं, जो कि आज की दुनिया में चेंज हो चुका है, क्या चेंज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइटिंग, ठीक है ना, घर के अंदर जो आपकी लाइटिंग का सिस्टम होता है तो वो तो सूरज के तो ताबे नहीं होता ना, वो तो आपके नफ्स के ताबे होता है, किसके ताबे होता है, नफ्स के ताबे होता है, ठीक है ना, जब दिल चाहता है, यानी जब नफ्स चाहता है आप उसको ऑन कर देते हैं, जब आपका नफ्स चाहता है आप उसको ऑन ऑफ कर देते हैं। तो अब जो है ये आर्टिफिशियल लाइटिंग का सिस्टम, ये अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम के ताबे नहीं है, अब ये आपके नफ्स के ताबे है, जो कि झूठा खुदा है बेसिकली, तो अब ये झूठे खुदा के ताबे हो गए, ठीक है। अब जो आपने लाइटिंग का अपना सिस्टम अपने ताबे यानी अपने नफ्स के ताबे किया हुआ है, तो अब आपकी बॉडी जो है ना वो अगर उस सिस्टम के ताबे हो चलनी शुरू हो जाए बजाय इसके कि अल्लाह के सूरज की ताब है। तो अब तो आपका टाइम डिफरेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक तो अंदर थी, लेकिन वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो उसको आप रीट्रेन भी कर सकते हैं, रीट्रेन भी कर सकते हैं। अगर उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो आप चेंज कर दें तो वो 7 to 7 की बजाय जो है वो 11 to 7 बन जाएगा, या 11 to 11 बन जाएगी, ठीक है। कि 11 बजे दोपहर को जो है वो सो के उठ रहे हैं, और जो है वो 11 बजे रात को जो है वो सोने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अब आपने अपने नफ्स के ताबे जो आर्टिफिशियल लाइटिंग थी, तो उसके जरिए से अपने दिमाग की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको रीट्रेन कर दिया, उसकी उसकी घड़ी अब आपने चेंज कर दी है, ठीक है। तो ये अब अल्लाह के निजाम के खिलाफ जाना शुरू हो गया, या अल्लाह के निजाम से कम अज कम हट के जाना शुरू हो गया, ठीक है ना। खिलाफ तो हम उस वक्त कहेंगे जबकि पूरा 180 डिग्री डिफरेंट हो जाए, कि सारा दिन आप सोते रहे और सारी रात आप जागते रहे, जिस तरह सऊदी अरब के अंदर आजकल हो रहा है, सारी रात जागते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, और सारा दिन सोते हैं। अच्छा, जिन जिन जिनको ये फॉलो करने की ख्वाहिश रखते हैं ना, उनके यहाँ ज्यादा ऐसा नहीं होता। अमेरिका यूरोप के अंदर वो दिन को जाग रहे होते हैं और रात को सो रहे होते हैं, हालांकि आर्टिफिशियल लाइटिंग जो है वो क्रिएट किसने करी, उन्होंने करी, ठीक है ना। यूरोप से जो है वो ये बल्ब की इन्वेंशन हुई है, लेकिन यूरोप में जो है वो रात को सो रहे होते हैं और दिन में जो है वो जाग रहे होते हैं, अपने ऑफिस के सिस्टम की वजह से, अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने तालीमी निजाम की वजह से। जो उनका तालीमी निजाम जो है वो आपको दुनिया के अंदर इस तरह से कामयाबी का तालीमी निजाम बजायर उन्होंने बना के रखा है। मुसलमान जब उनके पीछे भागता है तो ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं, ना खुदा ही मिला, ना विसाले से, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो आखिरत तो उसकी जाती ही जाती है, लेकिन दुनिया का भी वो नुकसान उठाते हैं, दुनिया का भी नुकसान उठाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अमेरिका जैसे बनने की ख्वाहिश में इन्होंने जो है ना वो अमेरिका की जो दुनिया थी ना उसका भी अपना बेड़ा गर्क कर लिया, ठीक है। और आखिरत तो वैसे ही इनकी जो है वो दायरे काफिर की इतबा करेंगे तो आखिरत कहां से रहेगी इनके पास। तो बहरहाल तो अब इनका पूरा खराब हो गई, लेकिन अब अपनी हरकतों की वजह से हुई है, ठीक है। या आपने माहौल की हरकतों की वजह से हो गया, अगर ना भी थी तो माहौल क्या वो अल्लाह के बनाए हुए के मुताबिक रखे, हमारा काम यह है कि हम अपने जिस्म के इस बायोलॉजिकल क्लॉक को जो है ना वो ट्रेन करें अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक, ना कि दज्जालियों के बनाए हुए निजाम के मुताबिक, या शायद शयातीन के बनाए हुए निजाम के मुताबिक जो कि अल्लाह के निजाम के खिलाफ बनाया गया है, ठीक है। तो हम हमारा हमारा जिस्म जो है वो तो हमारे हाथ में है ना, ठीक है। तो हम उसको उनके निजाम के तहत करने के बजाय अल्लाह के निजाम के तहत करें, जो कि अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी के साथ उसको गवर्न किया है। अब जो काफिर साइंसदान होते हैं तो ये भी हमें बातें बता तो रहे होते हैं, लेकिन ये भी निजाम को तो चेंज नहीं कर सकते ना, निजाम तो इनके भी बड़े बड़े के हाथ में होता है, तो वो निजाम तो ये नहीं बनाते साइंसदान। साइंसदान जब तो खाली बता रहे होते हैं कि हाँ भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर दो। इन्होंने फिर हमें बताया हुआ है, डॉक्टरों ने और साइंसदानों ने, कि भाई आप जो है ना वो अपने सर्कैडियन रिदम को जो है ना वो रेगुलेट कर सकते हैं, और उसको रेगुलेट करने के लिए आपको करना ये चाहिए कि सुबह जो है ना वो आप सूरज की रोशनी में जाएं और 15 से 30 मिनट जो है ना वो आप नेचुरल सनलाइट का एक्सपोजर लें। 15 मिनट ले या 30 मिनट मैक्सिमम जरूरत पड़ती है, तो इसके अंदर जो है ना वो आपको सूरज की रोशनी का जो एक्सपोजर मिलेगा ना, तो वो सूरज की रोशनी आपके आंखों से अंदर जाएगी आपके SCN के अंदर, और वो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये रोशनी का वक्त है, ये जागने का वक्त है, तो वो सेरोटोनिन जो है वो रिलीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये भी कहा इन्होंने कि भाई ये आप जो जागते हैं और जो आप सोते हैं ना, तो इसको भी जो है ना वो आप रोज मेंटेन करें कि जिस वक्त आप जागते हैं ना वो वही टाइम, रोजाना वही टाइम रखें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप अपने सेरोटोनिन रिदम, अगर आपका खराब हो भी गया था पहले, तो गोया कि आपने उससे तौबा कर ली और फिर से जो है वो आप नेकी के रास्ते पर आ गए, यानी फिर से आपने अपना सर्कैडियन रिदम जो है वो सही कर लिया। ठीक है, लेकिन ये कहना आसान है, करना आपको पता ही है कि अच्छा खासा मुश्किल काम है, जिसके ऊपर हम बड़ी तफसील के साथ पीछे बात कर चुके हैं। लेकिन एक और बात जो है वो आज जो हमने थोड़ी सी स्टडी करी थी, तो वो ये है कि इवन जो घर के अंदर हमारे पास जो आजकल लाइटिंग भी जो अवेलेबल है ना, ठीक है, पहले जो लाइटिंग होती थी बल्ब होते थे ना, वो LED बल्ब्स नहीं होते थे। अब जो है ना LED लाइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा बाजार में मिलती है और लोग उसको खरीद के लाते हैं, क्योंकि देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है, और दुकान वाला कहता है कि जी LED बल्ब जो है ना ये खराब नहीं होता और ये जो है ना वो सस्ता भी है और बड़े लंबे अरसे तक जो है चलता रहेगा, तो लोग खरीद के ले आते हैं LED बल्ब को। ठीक है, तो अब LED बल्ब के बारे में भी ये बताते हैं कि भाई LED बल्ब जो है ना उससे जो है ना वो आपका सर्कैडियन रिदम जो है वो और ज्यादा खराब होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो ब्लू लाइट होती है ना LED बल्ब के अंदर, या जो ये आपके फोन स्क्रीन है, स्क्रीन्स, ठीक है, तो उनके अंदर एक खास किस्म की ब्लू लाइट होती है। ठीक है, तो वो लाइट जो होती है ना वो आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है। मेलाटोनिन कौन सा हार्मोन था जो कि नींद के लिए जरूरी होता है ना, वो रिलीज होता है तो इंसान जो है वो नींद का सिग्नल मिलता है उसको। लेकिन LED लाइटिंग जो है वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को सप्रेस करती है, कम करती है उसको, रोकती है उसको। ठीक है, तो आप जब स्क्रीन देख रहे हैं तो आपके मेलाटोनिन भी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए फिर वो कि नींद को खराब करने का एक सबब क्या बना, LED लाइटिंग भी, जो कि आपके फोन के स्क्रीन के अंदर होती है, लैपटॉप स्क्रीन के अंदर भी होती है, लेकिन लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वो अमूमी तौर पर आपके आंखों से काफी दूर होती है, अगर चेक उसका भी इफेक्ट होता है, लेकिन वो चूंकि डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, फोन का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है आपकी आंखों से, तो उसकी जो ब्लू लाइट होती है वो ज्यादा आपके आंखों के ऊपर इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इससे फिर आपका सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर उसके नतीजे में फिर फटीग भी, यानी आप थके थके भी महसूस कर रहे होते हैं, आपकी डिसओरिएंटेड किस्म के, यानी आप जहां होते हैं तो आप अपने माहौल से जो है ना वो एक तरह से डिसओरिएंटेड होते हैं, डिसकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर नींद की प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया जिसको कहते हैं, वो भी होती हैं, इंडाइजेशन भी इससे हो सकती है, यानी आपके मेदे की खराबी, नींद की बहुत कमी होती है, तो आपने खुद भी कभी नोट किया होगा कि जी इसका असर जो है ना वो आपके मेदे के ऊपर भी पड़ रहा होता है। ठीक है, और इरिटेबिलिटी, यानी जो बार बार का चिड़चिड़ी सी तबीयत, जिसको हम कहते हैं तो चिड़चिड़ी तबीयत भी जो है वो इससे, और एक चीज जिसका के अक्सर खवातीन को बड़ी फिक्र रहती है वो है ओबेसिटी, यानी मोटापा, तो मोटापे का भी इसके साथ ताल्लुक है, नींद के साइकिल के आउट हो जाने का ताल्लुक मोटापे के साथ भी, और डायबिटीज के साथ, डायबिटीज जैसे कि पिछली क्लासों में बताया था कि हमने अपने भाई साहब से पूछा कि कहते हैं कि डायबिटीज जो है वो नींद की कमी की वजह से होता है, तो फिर उन्होंने तो जवाब दिया था कि नहीं, हर बीमारी ही नींद की कमी की वजह से होती है। ठीक, तो ये इतने बड़े बड़े नुकसान जो है वो इंसानियत को फिर इन बड़ी अच्छी अच्छी इजादात से जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है, और हमें अगर पता चल भी जाता है तो हम या तो सीरियस ही नहीं होते इन इनसे बाहर निकलने के लिए, या हम उनको बहुत अच्छा ही समझते रहते हैं जी। वो गरीब किस्म के हालात है, जाहिर है। बहरहाल बातें पहले भी हो चुकी है। किसी ने यहाँ पे लिखा है तो भाई ये तो आपके अपने जाती मसाइल है ना, तो हम इन्होंने अपना एक जाती तजुर्बा लिखा है कि भाई इनका कुछ चूंकि जॉब करती हैं, करनी पड़ती है जो भी है रीजन इसकी, तो वो इसकी वजह से शिफ्ट ड्यूटीज वगैरह होती हैं। तो 14 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक जो है ना वो इट्स कंफ्यूजिंग फॉर द बायोलॉजिकल क्लॉक, लेकिन अभी भी इससे यूज टू नहीं हो रहे हैं। अपने आप को आप समझे कि आप मशाइख में से हैं, ठीक है, यानी और क्या समझ सकते हैं। मशाइख है ना जिस तरह से पहरा देने वाले, तो रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, ठीक है। तो बहरहाल भी इसके ऊपर मजीद बातें की जा सकती है। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अब इसके लिए डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस किसी को कुछ तब्दील कर भी सकता है, कोई तब्दील नहीं भी कर सकता, लेकिन ये एक लंबी डिस्कशन हो सकती है, उस पर साइड पर रखते हैं। आगे फिलहाल किताब के अंदर से पढ़ रहे हैं कि इंसान कितना सोए, तो कहते हैं कि एक बंदे को कितना सोना चाहिए। साइंस ने साबित किया है कि बच्चा आमतौर पर 18 घंटे सोए तो वो फ्रेश होता है, और अगर बीमार हो तो सोता कम है और रोता ज्यादा है, माँ बाप को टफ टाइम देता है। तो देखें 18 घंटे, 24 में से 18 घंटे बच्चे की नींद होती है। अब 18 से ज्यादा सोना शुरू हो जाए ना तो वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, कभी कोई मसला है कि ये 18 से भी ज्यादा घंटे सो रहा है, ठीक है, और इससे कम जो है वो भी किसी बीमारी की वजह से उसका सोना जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, 12 महीने के बच्चे की नींद यानी 1 साल का हो गया तो अब 18 घंटे की बजाय 14 घंटे की हो जाती है। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस के जरिए से साइंसदानों ने इसको नोट डाउन कर लिया है कि अब 14 घंटे की नींद 1 साल के बच्चे की ये एवरेज नॉर्मल नींद जो है वो 14 घंटे की है। फिर बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो उसकी नींद 12 घंटे की हो जाती है। देखिए नींद जो है वो कम हो रही है, नींद की रिक्वायरमेंट कम हो रही है बॉडी की जैसे जैसे एज बढ़ रही है। फिर 5 साल का जब होता है तो उसकी नींद 11 घंटे की हो जाती है, सिर्फ 1 घंटे का फर्क होता है, फर्क पड़ता है इन 2 सालों के बाद जब वो 5 साल का हो जाता है। फिर जब 12 साल की उम्र का हो जाता है यानी 5 से लेकर के 11 साल तक जो है ना वो 11 घंटे की नींद नॉर्मल चल रही होती है। फिर जब 12 साल की उम्र का होता है तो उसकी नींद फिर तकरीबन 10 घंटे हो जाती है, ठीक है। जब टीन एजर हो जाता है, टीन यानी 13 से, ठीक है, 12 में जो है ना वो टीन का लफ्ज नहीं आता, 13 में जो है वो टीन का लफ्ज आता है, तो यहां से टीन एज शुरू हो जाती है और ये 19 तक चलती है। फिर उसके बाद इस टीन के डिब्बे में से मून निकल जाता है तो खाली 20 रह जाती है, ठीक है। तो टीन खत्म हो जाता है 19 पर, और 20 में फिर वो टीन बाकी नहीं रहता, तो ये 13 to 19 जो है इसको टीन एजर कह दिया उन्होंने इस वजह से अंग्रेजों ने। तो टीन एजर जब हो जाता है तो 9 से 10 घंटे नींद इसकी हमेशा के लिए सेट हो जाती है। हमेशा से मुराद टीन एजेस में जो है ना वो उसकी फिर 9 से 10 घंटे सेट हो जाती है। और फिर जो है ये 20 की उम्र से जो है ना ये वैसे तो टीन एज से निकल जाता है और ये एडल्टहुड में दाखिल हो जाता है, यानी इसको अब बड़ा कंसिडर किया जा सकता है एडल्ट का। तो जो एडल्ट जवान लोग होते हैं या भरपूर उम्र गुजारने वाले लोग होते हैं तो उनकी नींद आमतौर से 7 से 8 घंटे होती है। तो ये 7 to 8 hours जो है ना फिर ये एडल्टहुड की जितने भी इयर्स हैं हद के बुढ़ापे तक भी ये इतनी नींद जो है ना वो फिर चलती है। बुढ़ापे में जाकर के ये फिर थोड़ी और कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारता रहे तो 7 to 8 hours। तो साइंस ने साबित किया है कि 7 घंटे से कम सोएं तो भी हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है, और 7 घंटे से ज्यादा सोएं तो भी हार्ट अटैक के इम्कान बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बिसाइड्स ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि आपका ये डायबिटीज है, और इवन हमने तो सुना कि ऑटो इम्यून के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, किस्म की बीमारियां आती हैं, लेकिन ये कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज भी है ना, उनका भी ताल्लुक होता है इसके साथ, नींद के साथ। ठीक है, तो जो लोग 7 घंटे सोते हैं तो उनकी नींद बहुत अच्छी और मुकम्मल होती है। अब जाहिर है हार्ट के ऊपर जब इफेक्ट होता है तो फिर उसकी वजह से फिर और इश्यूज क्रिएट होते हैं, और हार्ट अगर सही से पंप ना करे तो फिर आपको पता है कि बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन वगैरह भी इसकी, आई डोंट नो और क्या क्या होता है, लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बॉडी में पानी जो है वो अगर आपका किडनीज आगे जो है वो हम बाहर नहीं निकाल पा रही होती हैं वगैरह वगैरह, ना जाने क्या क्या, सब सब कुछ कनेक्टेड है बेसिकली। तो अंदर अल्लाह का निजाम है ना, तो डिसकनेक्टेड कैसे हो सकता है, सब कनेक्टेड होता है। औरत जब हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको 8 घंटे की नींद मिल जाए तो उसके जिस्म में बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये 8 आवर्स की नींद जो है ना फिर उसके औरत के लिए भी ठीक होती है। अच्छा एक मिनट, सर्कैडियन रिदम के बारे में कोई बात रह गई हो? ऐसे तो बहुत सारी इसकी बातें हैं लेकिन ओवरऑल आपको हमने बता दिया है। जाहिर है इस क्लास के अंदर सब तो डॉक्टर नहीं है, एक आधी होंगी, बाकी सब तो ज्यादातर आम बैकग्राउंड की खवातीन होते हैं, उनके हिसाब से बस इतनी बात बताती। एक चीज जो है वो जैसे कि सवाल करने वाली खातून ने भी कहा कि भाई इतने साल गुजर गए हैं लेकिन नाइट शिफ्ट्स की वजह से जो है वो मेरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ होता है, और जो है वो कैसे उसको ठीक करूं। तो इसके बारे में असल में हम शुरू में बात कर भी चुके हैं ना, आपको अगर याद हो कि जो स्लीप मैनेजमेंट की पहली क्लास, तो उस क्लास के आखिर में इस आजिज ने एक बात करी थी। ठीक है, वो बात इससे रिलेटेड थी। वो क्या बात थी, किसी को याद है? आपको भी तो थोड़ा क्विज होना चाहिए। पहली क्लास आखिर में एक बात करी थी जिसने, जिसका वो इनके सवाल के साथ, हाउ कैन आई इंप्लीमेंट नींद का निजाम ऑन द सेट स्केड्यूल। जी ये तीसरी दफा, दूसरी दफा डिस्कनेक्ट हुआ था अभी, खैर हम वापस आ चुके हैं। तो किसी को याद है क्या बात हुई थी? उसी के ऊपर आज की क्लास खत्म भी कर देंगे, टाइम तो हो गया। टर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग, नहीं ये बात नहीं करी थी अभी। लाइट तो आप उस वक्त बंद करें ना जब आपके बस में हो, अगर आपके बस में ही नहीं है, या ये कि आप किसी भी वजह से आप नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करें? नहीं याद आ रहा किसी को कि भाई जब आप, हाँ ठीक है माशाल्लाह किसी को तो याद है, तो सबने पढ़ लिया इनका जवाब। ये बात हुई ठीक है कि अगर आप नींद के निजाम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो उसे गलत तो समझे ना कम से कम। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जिसका ताल्लुक हमारे ईमान के साथ भी है, और इसी का ताल्लुक जो है ना वो हर खैर के साथ इसका ताल्लुक है कि भाई अगर शर से जो है वो हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, चाहे अपने नफ्स की कमजोरी है उसकी वजह से नहीं बचा पा रहे, चाहे अपने माहौल की वजह से हम अपने आप को उससे नहीं बचा पा रहे, गलती से नहीं बचा पा रहे, ठीक है, या जो है वो कोई और मजबूरी है जैसे कमाना है, जैसे जो है वो अपना जो भी मसला है जिसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम आउट हुआ हुआ है, हम गलत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा दीन हमें क्या सिखाता है कि तुम कम से कम अपने दिल में उसको गलत समझते रहो। ठीक है, उसको गलत समझते रहो, उसको ठीक समझना कभी ना शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि गलत को ठीक समझना शुरू कर देना, ये जो है ना फिर इंसान को, फिर अगर आप अकायद से मुतालिक बात करें तो फिर तो आपको काफिर बना देगा ये वाली चीज। लेकिन अगर इवन दुनिया के इस किस्म के निजाम को भी अगर आप ठीक समझना शुरू कर दें ना, तो उससे क्या होगा कि अब जो है ना वो बेटरमेंट की, इम्प्रूवमेंट की आपके लिए पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने गलत को जो है वो सही कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप करते रहे इसके ऊपर, यानी अल्लाह ताला से मदद मांगते रहे और उसको बुरा समझते रहे, और मजीद अल्लाह ताला की मदद हासिल करने के लिए क्या करना, क्या करें कि आप दूसरों को भी इसकी बुराई बताते रहे, दूसरों की खैरख्वाही करते रहे, ये बात कभी भी हाथ से ना जाने दें कि जो गलती आपसे हो चुकी है या आपसे हो रही है तो उसको दूसरों को भी बताएं खैरख्वाही के लिए। अद्दीन और नसीहा, ये दीन तो सरासर खैरख्वाही है, ठीक है, दूसरों को बताएं कि देखो ये सही नहीं है, मैं बेशक कर रही हूं, मैं बेशक कर रहा हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये गलत है और इसके ये नुकसान हैं, ठीक है। तो ये जो खैरख्वाही है ना, देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये खैरख्वाही इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं 30 मरतबा और कहता इस बात को, इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला इस पे खुश हो करके ना अपने बंदे के लिए बहुत सारे मसाइल को आसान कर देते, उसके लिए आगे के रास्ते हमवार कर देते। जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के दूसरे बंदों की खैरख्वाही कर दे, तो भाई खैरख्वाही करने का मतलब क्या है, नुकसान से बचाना। तो अब अगर हम नुकसान में पड़ चुके हैं किसी की भी गलती की वजह से, हमारी पिछली जनरेशन की गलती की वजह से, या हमारी अपनी किसी बेवकूफी की वजह से हम परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं, तो दूसरों को तो बचाएं ना उससे, खैरख्वाही करें ना इससे, अल्लाह ताला के लिए हमारे निजाम को ठीक कर देना, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखते हुए हम अपना काम करते रहे, एक तो गलती पे तौबा करते रहे और दूसरों को जो है वो उससे बचाने की मेहनत करते रहे, ठीक है। बस ये एक पैराग्राफ जो उन्होंने आखिर में लिखा था वो भी पढ़ लेते हैं कि चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की जिंदगी की नींद की जरूरत मुख्तलिफ बनाई है। अगर एक बंदा अपने काम की वजह से कम सोए तो जिस्म में उसका हिसाब रखा जाता है, उसकी फाइल बनती है, उसको कहते हैं स्लीप डेट, कि ये नींद का कर्जा होता है। चुनाचे दूसरे चौथे दिन के बाद फिर जिस्म वो जो कर्जा होता है उसको पूरा करता है, और एक दिन बंदे को लंबी नींद आती है। तो वो लंबी नींद आती है तो एक हद तक तो उसका वो सिस्टम गोया के फ्लश आउट हो जाता है, लेकिन अगर फिर वही सिस्टम चलता रहे, नाइट शिफ्ट चलती रहे, तो वो ठीक नहीं हो जाता। हाँ, लंबी नींद एक दफा उसको आएगी, उसके कुछ बदन की थकन वगैरह दूर हो जाएगी, लेकिन बॉडी का जो सिस्टम आउट हो चुका है, वो सिस्टम जो है ना वो तो निजाम को ठीक करने पर ही पे जा करके ठीक होगा। तो यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता जो हजरत ने लिखा ना कि नींद की जरूरत अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाई है। देखें, न्यू बॉर्न की जरूरत मुख्तलिफ है, 3 साल के बच्चे की मुख्तलिफ है, और एडल्ट की जो है वो मुख्तलिफ है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने आपको चंद दिन पहले किसी दरसे कुरान के अंदर भी समझाया था, या किसी और बच्चों की इवन जो सीरत क्लासेस है उनके अंदर भी बात हुई थी कि आपकी जरूरत क्या है, ये बड़ी स्पेसिफिक किस्म की चीज होती है हर बंदे के लिए, उसके अहवाल, उसकी उम्र, उसके सेहत, उसके जो है वो माहौल, उसके हिसाब से उसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो अपनी जरूरत को हमें खुद गेज करना पड़ता है, खुद कैलकुलेट करना पड़ता है कि जी मेरी क्या जरूरत है। और ये अहम खाली सेहत के लिए नहीं है कि अगर आपने अपनी जरूरत के मुताबिक आपको चीज देनी शुरू कर दी तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है। जैसे नींद का मामला जो है वो जिस्मानी सेहत के साथ और दिमागी सेहत के साथ भी है, ठीक है। तो अगर आपने अपनी जितनी जरूरत है नींद की उतनी नींद पूरी करी तो आपकी दिमागी और जिस्मानी सेहत दूर ठीक हो जाएगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। लेकिन एक और इससे भी ज्यादा अहम चीज वो क्या है कि अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची को हराम करार दिया है, इतना बुरा करार दिया है कि ये जो मुबज़िरीना काना इख्वानु शयातीन है ना, ये जो फजूल खर्च होते हैं ये शयातीन के भाई होते हैं। तो फजूल खर्ची, ठीक है, ये फजूल खर्ची का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है? जरूरत के साथ। जो जरूरत है ना, वो फजूल खर्ची नहीं है। तो फजूल खर्ची तो उसी वक्त होती है कि जब जरूरत से ज्यादा कोई काम किया जाए, ठीक है ना। वला तुसरिफू, ये भी फजूल खर्ची मत करो, ये अल्लाह का हुक्म है, फजूल खर्ची मत करो। तो फजूल खर्ची डिफाइन करने के लिए आपको जरूरत डिफाइन करनी पड़ेगी, जरूरत से ज्यादा फजूल खर्ची कहलाएगी, और फजूल खर्ची जो है वो गुनाह है, हराम है, ठीक है। तो यही मामला जो कि फजूल खर्ची में हम समझते हैं कि सिर्फ इसका ताल्लुक जो है वो माल व असबाब के इस्तेमाल के साथ है, नहीं, इसका ताल्लुक नींद के साथ भी है, ठीक है। कि भाई नींद की आपकी जो जरूरत है ना, उतना सोएंगे तो जरूरत पूरी होगी, अच्छी होगी, यानी फजूल नींद होगी, ठीक है। तो हजरत ने ये लफ्ज इस्तेमाल करके यहां पर हमारे लिए एक और चैप्टर खोल दिया कि जी अपनी अपनी जरूरत जो है वो इवन नींद के मामले में भी डिफाइन करें, ताकि नींद में भी वला तुसरिफू के हुक्म पर अमल किया जा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।